हिडन फाइल्स साइबर एक्सपर्ट अमित दुबे के साथ ओनली ऑन रेड एफएम। रेड एफएम सुन रहे हैं आप और शुरू हो चुका है इंडिया का पहला साइबर क्राइम रेडियो शो हिडन फाइल्स। क्या आप उन लोगों में से हैं जो अपना फोन अनअटेंडेड छोड़ देते हैं? आज के हिडन फाइल्स के एपिसोड के बाद आप ऐसा करना बंद कर देंगे। सुनिए ये दिलचस्प रियल लाइफ साइबर क्राइम केस साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट अमित दुबे से।
मम्मा, आप कौन सी ट्रेन से आ रहे हो?
ये सवाल छोटी काव्या ने अपनी मम्मी से पूछा। मम्मी अंजलि ने जवाब दिया,
बेटा रात की ट्रेन है, दक्षिण एक्सप्रेस।
काव्या ने फिर से पूछा,
ये न्यू दिल्ली से जाएगी क्या?
अंजलि ने कहा,
नहीं बेटा, ये हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से जाएगी।
लेकिन काव्या के तो सवाल खत्म ही नहीं हो रहे थे।
तो आपको स्टेशन कौन ड्रॉप करेगा?
अंजलि काव्या के इतने सारे सवालों से परेशान हो रही थी और उसने झड़कते हुए कहा,
अभी अपने सवाल रहने दो और मुझे काम करने दो, निकलने से पहले मुझे कुछ अर्जेंट काम खत्म करना है।
अंजलि समय से पहले ही स्टेशन पहुंच गई थी, उसकी अपर बर्थ थी। उसने झांसी पहुंचने के टाइम के पहले का अलार्म लगाया और फिर तुरंत बिस्तर बिछाकर मोबाइल फोन चार्जिंग पर लगाकर सो गई। गाड़ी टाइम पर झांसी पहुंच गई थी। झांसी का इवेंट बहुत अच्छा रहा और शाम को अंजलि की फ्रेंड श्रुति का फोन आया। श्रुति झांसी में ही रहती है और अंजलि की पुरानी दोस्त है। श्रुति ने कहा,
यार तेरा फोन ही नहीं लग रहा था, फिर मैंने व्हाट्सएप पर ट्राई किया।
अंजलि ने कहा,
हाँ यहाँ सिग्नल का काफी प्रॉब्लम है, व्हाट्सएप कॉल ही लगता है, सुबह और भी लोगों की कंप्लेंट आई है।
श्रुति ने शाम का प्रोग्राम पूछा तो अंजलि ने कहा,
झांसी आई और नारायण चाट भंडार से चाट नहीं खाई तो आना सफल ही नहीं हुआ।
और फिर शाम को श्रुति और अंजलि सदर बाजार पहुंच गए। चाट बहुत स्वादिष्ट थी और खाने के बाद अंजलि ने पेमेंट करने के लिए अपना डेबिट कार्ड दिया और काउंटर पर बैठे व्यक्ति ने कार्ड लौटा दिया और कहा, आपका कार्ड काम नहीं कर रहा। श्रुति ने कहा, कोई नहीं, पेमेंट मैं दे देती हूँ। यहाँ तो मामला सॉल्व हो गया, पर लौटते वक्त अंजलि ने सोचा कि ATM से कुछ कैश ही निकाल लेती हूँ। कई बार कार्ड काम ना करने की वजह से अननेसेसरी एम्बैरेसमेंट हो जाती है और जब ATM से भी पैसे ना निकले तो अंजलि को कुछ गड़बड़ लगा। उसने तुरंत बैलेंस चेक किया तो जो दिखा उसे देखकर उसके होश उड़ गए। अंजलि के अकाउंट में सिर्फ 11,000 रुपये बैलेंस था, मतलब उसका अकाउंट ऑलमोस्ट खाली हो चुका था। एक पल को तो उसे कुछ समझ ही नहीं आया कि करे क्या। उसने बाहर आकर तुरंत श्रुति को बताया और श्रुति ने उसे तुरंत अपने बैंक को इन्फॉर्म करने को कहा। अंजलि ने अपना बैंक अकाउंट अपने लैपटॉप से भी लॉगिन करने की कोशिश की पर वो लॉगिन नहीं कर पा रही थी, पासवर्ड मिसमैच एरर आ रहा था। उसने पासवर्ड रिकवरी की भी कोशिश की पर उसे कोई OTP नहीं आ रहा था। उसने तुरंत अपने बैंक के कस्टमर केयर पर फोन किया और कहा कि उसे लगता है उसका बैंक अकाउंट हैक हो गया है, तो अकाउंट रिकवरी में हेल्प करें। कस्टमर केयर रिप्रेजेंटेटिव ने कहा,
जो नंबर आपके बैंक अकाउंट से लिंक्ड है कृपया उससे कॉल करें।
अंजलि ने इरिटेट होते हुए कहा,
अरे मैं उसी नंबर से कॉल कर रही हूँ।
कस्टमर केयर रिप्रेजेंटेटिव ने कहा,
नहीं मैम, आप किसी दूसरे नंबर से कॉल कर रही हैं। दूसरा ऑप्शन ये है कि आपके बैंक अकाउंट से लिंक जो ईमेल आईडी है आप उससे एक ईमेल रिक्वेस्ट भेज दें, वी विल रिवर्ट यू द रिकवरी लिंक।
अंजलि और परेशान हो गई। उसने तुरंत अपने लैपटॉप में ईमेल लॉगिन करने की कोशिश की पर टू हर सरप्राइज ईमेल पासवर्ड भी मैच नहीं कर रहा था। अंजलि की कुछ समझ नहीं आया कि उसके साथ ये हो क्या रहा है। उसने कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव से पूछा,
Is there any WhatsApp chatbot where I can send my request?
कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव ने एक WhatsApp नंबर बता दिया पर जैसे ही अंजलि ने अपना WhatsApp खोला उसे रियलाइज हुआ कि उसका WhatsApp सेशन भी लॉग आउट हो चुका है। उसने WhatsApp दोबारा लॉगिन करने की कोशिश की पर अब OTP ही नहीं आ रहा था। आखिरकार श्रुति ने अंजलि को सलाह दी,
तू एक बार मुझे नॉर्मल कॉल कर।
और जैसे ही अंजलि के फोन की रिंग श्रुति के फोन पर बजी दोनों चौंक गए। ये अंजलि का नंबर था ही नहीं, ये तो कोई और ही नंबर था। अंजलि एकदम से घबरा गई, ये कैसे हो सकता है, उसके फोन में तो उसका ही सिम था। मतलब कि अंजलि का सिम अब क्रिमिनल के पास था और वो न सिर्फ अंजलि के बैंक अकाउंट बल्कि उसका व्हाट्सएप और दूसरे सोशल मीडिया अकाउंट भी हैक कर चुका था और अंजलि खुद अपने अकाउंट रिकवर नहीं कर पा रही थी। आज सैटरडे था और अगले दिन संडे, और ऑनलाइन रिकवरी ऑप्शन में अंजलि जैसे ही ट्राई करती उसे सुनने को मिलता कि हम कैसे मान लें कि आप ही अंजलि हैं, आप अपनी किसी रजिस्टर्ड डिजिटल आइडेंटिटी से कम्युनिकेट कीजिए, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, रजिस्टर्ड ईमेल आईडी या रजिस्टर्ड व्हाट्सएप नंबर। अंजलि के पास इनमें से किसी का कंट्रोल नहीं था। अब यही एक चारा था कि सिम बंद करा दिया जाए। दोनों भागकर अंजलि के टेलीकॉम ऑपरेटर के सपोर्ट सेंटर पहुंचे और फिर अंजलि के आईडी और कंप्लेंट के बेस पर सिम कार्ड ब्लॉक कर दिया गया। नया सिम कार्ड भी इशू हो गया, पर उसको एक्टिवेट होने में अभी एक घंटे का टाइम था। इस बीच अंजलि और श्रुति पुलिस स्टेशन पहुंचे और वहां कंप्लेंट दर्ज कराई। पुलिस ने अंजलि से पूछा कि उसे क्या लगता है उसके फोन में सिम कार्ड कब बदला, तो अंजलि को बहुत सोचने पर भी याद ही नहीं आया कि सिम कार्ड कैसे बदल सकता है और कहां बदला होगा। अंजलि का सिम कार्ड निकालकर जो सिम कार्ड अंजलि के फोन में डाल दिया गया था वो सिम किसी आदेश के नाम पर था। उसने वो सिम कार्ड पुलिस को दे दिया और उसकी कंप्लेंट के बेस पर जांच शुरू हो गई। पर जब तक पुलिस अंजलि का बैंक अकाउंट फ्रीज कराती उसके अकाउंट से 10,000 रुपये और निकल चुके थे। जिन अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हुए थे उनके डिटेल्स निकाले गए और उन अकाउंट्स को भी ब्लॉक कराने के लिए रिक्वेस्ट भेज दी गई। पर सबसे जरूरी बात यह जानना था कि अंजलि के फोन से सिम निकला कब और कैसे एक्सचेंज हुआ। जब हमने अंजलि के फोन का सिस्टम लॉक चेक किया तो हमें सिम एग्जिट का टाइम मिल गया, और जब हमने वो डेट एंड टाइम अंजलि को बताया तो उसके होश उड़ गए। उसने कहा,
उस वक्त तो मैं ट्रेन में थी।
और फिर जैसे उसे सब समझ आ गया। अंजलि ने कहा कि मैं फोन चार्जिंग पर लगाकर सो गई थी और शायद उसी वक्त किसी ने किया होगा। पर सवाल यह भी था कि उस व्यक्ति ने सिम निकाल के अंजलि के फोन में दूसरा सिम क्यों डाला। शायद वो चाहता था कि अंजलि का व्हाट्सएप या इंटरनेट चलता रहे ताकि उसे लंबे समय तक शक ही ना हो कि उसके फोन से सिम निकाल लिया गया है। और अगर ट्रेन में ही यह हुआ था तो एक पॉसिबिलिटी थी कि जिस व्यक्ति ने भी यह किया था वो अंजलि के आसपास वाली बर्थ पर ही था। हमने अंजलि के ट्रेन टिकट को रेफरेंस मान IRCTC से जानकारी मांगी कि उस दिन उस कंपार्टमेंट में दिल्ली से झांसी के बीच ट्रैवल के दौरान बाकी 7 लोग कौन थे, और वो डिटेल्स हमारे पास आ गए। 7 पैसेंजर्स में 2 लोग तो आगरा उतरे थे और वहां से एक नया व्यक्ति चढ़ा था, 2 लोगों का डेस्टिनेशन भोपाल था और 2 लोग झांसी में ही उतरे थे। पुलिस ने उन सभी लोगों के बैकग्राउंड और आइडेंटिटी वेरीफाई करना शुरू किया, पर ऐसा कोई कारण समझ नहीं आ रहा था कि हम उनमें से किसी पर शक कर सकें। सभी प्रोमिनेंट लोग थे और कुछ भी गड़बड़ नहीं लग रहा था। इस बीच पुलिस ने आदेश के नाम पर जो सिम अंजलि के फोन से मिला था उस पर जांच करते हुए ये क्वेरीज ऑपरेटर को भेजी कि ये सिम इससे पहले किस किस फोन में यूज हुआ है और जिन फोन्स में ये सिम यूज हुआ था उसमें अभी कौन सा सिम चल रहा है। इस सिम के CDR IPDR भी निकाले गए, पर कुछ भी क्लू नहीं मिल रहा था। आदेश के KYC निकाले गए पर उससे कॉन्टेक्ट नहीं हो पा रहा था। पता नहीं क्यों मुझे कुछ ख्याल आया और मैंने आदेश के नंबर पर व्हाट्सएप कॉल लगाया और मैंने देखा कि रिंग जा रही है, मतलब कि आदेश का सिम हमारे पास था लेकिन उसके नंबर का व्हाट्सएप किसी मोबाइल पर कॉन्फिगर्ड था। मुझे हैरानी तो तब हुई जब आदेश ने फोन उठा लिया, और आदेश ने जो हमें बताया वो तो और भी चौंका देने वाला था। आदेश को तो विश्वास ही नहीं हुआ कि उसका सिम हमारे पास है। आदेश का फोन एक डुअल सिम फोन था और जब हमारे कहने पर उसने अपना फोन चेक किया तो उसमें एक सिम गायब थी। आदेश ने हमें बताया कि वो दिल्ली रहता है और कुछ 3 दिन पहले ही ट्रेन से दिल्ली से मुंबई आया है, मतलब आदेश का सिम कार्ड भी ट्रेन जर्नी के दौरान निकाल लिया गया था। इसका मतलब था कि अंजलि का सिम किसी को ट्रैवलर ने नहीं बल्कि किसी सिम चुराने वाले गैंग ने एक्सचेंज किया था, और अगर ऐसा कोई गैंग है तो वो अभी भी एक्टिव होगा। ट्रेन के इस रूट पर रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स को स्पेशल गाइडेंस दी गई और ऐसे सभी एक्टिविटीज पर नजर रखने को कहा गया। कहा गया कि सिविल ड्रेस में बीच में चढ़ने वाले सभी यात्रियों पर नजर रखें, खास तौर से उन सभी ट्रेन में जो रात में दिल्ली से निकलती हैं। उस दिन हेड कांस्टेबल राजेंद्र सिंह जी ड्यूटी पर थे, जीटी एक्सप्रेस दिल्ली से निकल चुकी थी और मथुरा क्रॉस करने वाली थी। राजेंद्र सिंह जी एक AC3 कोच में चेकिंग कर रहे थे कि तभी उन्हें एक महिला के चिल्लाने की आवाज आई। राजेंद्र जी लपक कर उस कंपार्टमेंट में पहुंचे तो एक महिला घबरा कर चिल्ला रही थी कि उसका फोन किसी ने चुरा लिया। राजेंद्र सिंह ने सीटी बजाई और उनके कुछ और साथी भी दूसरे कंपार्टमेंट से उस कोच में आ गए थे। कोच के दोनों तरफ पुलिस लगा दी गई, पर अब करें क्या, फोन अगर यहीं किसी के पास भी है तब भी सभी की तलाशी तो ले नहीं सकते, और इतने सामान में किसी ने फोन कहां रख दिया या फेंक दिया कैसे पता चलेगा। यह तय था कि चोर फोन लेके बाहर नहीं गया होगा, क्योंकि ये चोर सिम चुराते थे या एक्सचेंज करते थे, और अगर उसी गैंग का यह काम है तो फिर चोर आसपास ही होगा, क्योंकि उसे फोन वापस भी तो रखना था। राजेंद्र जी एक एक कर सबके चेहरे देख रहे थे और उन्हें उम्मीद थी कि वो क्रिमिनल को उसकी बॉडी लैंग्वेज से पहचान लेंगे। फिर उन्होंने उस महिला से उसका मोबाइल नंबर पूछा और वो नंबर अपने फोन से डायल कर दिया, पर कहीं कोई रिंग ही नहीं बजी। जाहिर सी बात थी कि फोन साइलेंट था। राजेंद्र जी ने मुझे फोन किया और इंसिडेंट की जानकारी दी, और मैंने तुरंत सलाह दी कि एंड्रॉयड डिवाइस मैनेजर या गूगल फाइंड माई डिवाइस यूज कीजिए। मैंने राजेंद्र जी को एक लिंक भेजी जो कि एंड्रॉयड डिवाइस मैनेजर की थी, और कहा कि अब उस महिला का जीमेल आईडी इस लिंक पर लॉगिन करें। जब वो लॉगिन हो गया तब मैंने कहा कि अब उनको स्क्रीन पर फोन की लोकेशन भी दिख रही होगी और एक प्ले साउंड का ऑप्शन भी आ रहा होगा। जैसे ही उन्होंने वो प्ले साउंड का ऑप्शन प्रेस किया, उस महिला का फोन फुल साउंड में रिंग करने लगा और सारे यात्रियों की नजर उस व्यक्ति की तरफ गई जहां से वो आवाज आ रही थी। वो व्यक्ति सकपका कर अपना बैग समेटने लगा, पर इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, राजेंद्र सिंह जी ने उसे पकड़ लिया। चोर पकड़ा गया और चोर के पास से मिले अनेकों सिम कार्ड और दूसरे चोरी के फोन भी। उस व्यक्ति से फर्दर इन्वेस्टिगेशन में पुलिस को बहुत सारी जानकारी मिली और वो पूरा गैंग भी पकड़ा गया। आपकी साइबर सिक्योरिटी को अपग्रेड करने वाला शो हिडन फाइल सुन रहे हैं आप रेड एफएम पर। मैं हूं साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट अमित दुबे, और आज के रियल लाइफ साइबर क्राइम केस पर आपने सुना कि किस तरह अंजलि दिल्ली से झांसी एक नाइट ट्रेन में ट्रैवल करके जाती है और झांसी पहुंचकर उसका फोन काम करना बंद कर देता है। थोड़ी सी देर में ही अंजलि को पता चल जाता है कि उसके UPI पेमेंट्स नहीं हो रहे, उसके कार्ड्स भी इनवैलिड हो गए, और अकाउंट बैलेंस चेक करने पर सबसे बड़ा झटका लगता है जब उसको अपना अकाउंट भी खाली मिलता है। लेकिन दिक्कत तब होती है जब बैंक के कस्टमर केयर पर कॉल करने पर भी अंजलि को कोई हेल्प नहीं मिलती, क्योंकि कस्टमर केयर कहता है कि आप रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से कॉल नहीं कर रही, यानी अंजलि के फोन से उसका सिम किसी ने चुरा लिया और उसकी जगह कोई दूसरा सिम प्लांट कर दिया। लेकिन यह सब कैसे हुआ और किसने किया, क्या वो पकड़े गए? इन सवालों के जवाब आपको रेड एफएम हिडन फाइल्स पॉडकास्ट में मिल जाएंगे। लेकिन ऐसे क्राइम से आप कैसे सेफ रह सकते हैं वो मैं आपको अभी बता देता हूं। सबसे पहले तो हमें यह ध्यान रखना जरूरी है कि हमारा फोन अब सिर्फ एक कम्युनिकेशन डिवाइस नहीं रह गया। हमारे फोन के अंदर न सिर्फ हमारे फाइनेंशियल डिटेल्स होते हैं, पासवर्ड्स होते हैं, बहुत सारी पर्सनल जानकारी होती है, और साइबर स्पेस में खुद को ऑथेंटिकेट करने के लिए सारी डिजिटल आइडेंटिटीज भी होती हैं। ऐसे में यदि आपका फोन चोरी हो जाता है तो इंटरनेट पर आपको ये साबित करना कि आप वही व्यक्ति हैं बहुत मुश्किल हो सकता है। इसलिए अपने फोन का ध्यान रखें, कभी भी किसी पब्लिक प्लेस में फोन अनअटेंडेड न छोड़ें, क्योंकि यदि आपने फोन 2 मिनट के लिए भी छोड़ दिया तो उस पर आया हुआ OTP कोई भी पढ़ सकता है, क्योंकि OTP आपके स्क्रीन पर फ्लैश होता है या वो आपके फोन का सिम बदल सकता है, और आपको कई दिनों तक पता ही नहीं पड़ेगा कि आपके फोन में कोई दूसरा सिम पड़ा हुआ है, क्योंकि आजकल हम नॉर्मल कॉल कम यूज करते हैं और वाइब कॉल ज्यादा यूज करते हैं। ऐसे में ये भी नजर रखें कि आपको कोई अजीब से SMS तो नहीं आ रहे, और आप बीच बीच में नॉर्मल कॉल्स भी लगाते रहें ताकि किसी सिम एक्सचेंज की परिस्थिति में आपको पहले से पता पड़ जाए और आप रिएक्टिव एक्शन ले सकें। उम्मीद करता हूं कि अंजलि की तरह आपको किसी इनकन्वीनियंस का सामना ना करना पड़ा हो ऐसे किसी क्राइम का शिकार होके। सुनिए जरा आज का साइबर सवाल।
हाय, मैं रचना हूँ दिल्ली से, और इन अ फ्यू मंथ्स हम फैमिली के साथ एक फॉरेन ट्रिप पर जा रहे हैं। अमित जी, क्या कुछ चीजें ध्यान में रखनी होती है इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी व्हेन वी गो टू अ फॉरेन लैंड?
रचना जी, ये बहुत अच्छा सवाल है। जो सबसे पहले मैं टिप आपको देना चाहूंगा कि आप अपनी बैंकिंग ऐप में जाएं और आप अपने ट्रांजेक्शन की लिमिट सेट कर दें कि इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन आप कितना चाहते हैं एक दिन में होना चाहिए, उससे ज्यादा ना हो। नेशनल ट्रांजेक्शन लिमिट वो वैसे भी डिफॉल्ट सेट होनी चाहिए ताकि कभी भी एक लिमिट से ज्यादा पैसा आपके अकाउंट से किसी फ्रॉड के थ्रू ना निकल सके। तो ये तो एक प्रोएक्टिव मेजर है जिससे आप काफी हद तक बचे रहेंगे। इसके अलावा जो ध्यान देने वाली बात वो ये है कि आपका सिम कार्ड यदि आपके ट्रैवल करने के दौरान बंद रहता है या यूज नहीं होता है तो एक सलाह दूंगा कि आप अपने मोबाइल में एक एप्लीकेशन डाल सकते हैं। वो एप्लीकेशन आपके SMS को आपके ईमेल पर भेज देता है। तो ऐसे में आप चाहें तो अपना फ़ोन इंडिया में किसी को दे जाएं या उसको चार्जिंग पर लगा दें, वो ऑन रहे, और एज लॉन्ग एज फ़ोन ऑन रहता है आपको OTPs वहाँ भी दिख सकते हैं और आप कई ऐसी चीज़ें एक्सेस कर पाएंगे या रिकवर कर पाएंगे जो अदरवाइज मुश्किल हो जाएगी। ये दूसरी बात हमेशा याद रखें कि जो इंटरनेशनल ई कॉमर्स पोर्टल्स हैं या जो इंटरनेशनल परचेज होती हैं या लोकल टिकट बुकिंग्स होती हैं किसी भी कंट्रीज़ में, उसमें जब आप कोई क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं तो उसमें कोई OTP नहीं आता और आपके डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड एज इट इज़ यूज़ हो जाते हैं। तो ये चीज़ आपको फ्रीडम भी देती है लेकिन ये ध्यान देने वाली बात है कि एक लेवल का इनसिक्योरिटी भी है क्योंकि आपका डबल वेरीफिकेशन नहीं होता है। तो यदि आपका क्रेडिट कार्ड खो गया है या डेबिट कार्ड खो गया है तो उसके मिसयूज़ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। ऐसे में कोई व्यवस्था आपके पास होनी चाहिए कि वो तुरंत आप ब्लॉक करा सकें। तो आप अपने बैंक के कस्टमर केयर की डिटेल, रिलेशनशिप मैनेजर का नंबर, ये सब अपने साथ लेके जाएं ताकि ऐसी किसी परिस्थिति में आप उनको इन्फॉर्म कर तुरंत अपना बैंक अकाउंट फ्रीज करा सकें या लॉक करा सकें। विश यू अ वेरी हैप्पी जर्नी रचना, एंड आप लोग भी अगर ओवरसीज ट्रैवल प्लान कर रहे हैं तो मेक श्योर यू फॉलो दीज डूज एंड डोंट्स। एक मस्ट डू और है और वो ये है कि आप रेड FM हिडन फाइल्स पॉडकास्ट सुने और अपनी फैमिली को भी सुनाएं सो दैट दे स्टे साइबर सुरक्षित। साइबर वर्ल्ड में भी प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, लेकिन फिर भी इफ यू आर स्टक समवेयर और नीड ए साइबर एडवाइस, रीच आउट टू अस थ्रू रेड FM इंडिया सोशल मीडिया हैंडल्स या फिर Route64 फाउंडेशन के FB पेज या मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स @cyberdobe पर अपने सवाल पूछ सकते हैं। हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीक with another episode of Hidden Files. Till then, stay cyber-surakshit, Red FM, bajate raho.